श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता भूत बलि और पुष्पदंत आचार्य है और जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये जो पुस्तक चौथी क्षेत्रानुगम, उसमें हम 68 पृष्ठ पर आए हुए हैं। हमने 8वां नंबर का सूत्र पढ़ा था 67 पेज पर, पृष्ठ पर। उसमें हमने देखा था कि सासाधन समय दृष्टि गुणस्थान से लेकर संयता संयत गुणस्थान तक के तिर्यंच जीव, हमारी गति मार्गणा की बात चल रही है। तो गति मार्गणा में तिर्यंचों की बात चल रही है, तो मिथ्या दृष्टि तिर्यंचों में तो हमने देख लिया। अब सासाधन से लेकर संयता संयत तक, वहाँ तक के जो तिर्यंच है वो कितने क्षेत्र में रहते, उसकी बात चल रही है। देखो, जब जब क्षेत्र की बात आती है तो उसमें स्वस्थान स्वस्थान है रहने का उनका हमेशा का ठिकाना, तो वो तो बहुभाग हो गए, संख्यात बहुभाग। और फिर जो एक भाग बचा है उसमें से एक भाग विहार व स्वस्थान का होगा, कोई वेदना समुदात वाले कषाय, यानी वो बाकी सब वो संख्यात विभाग होते हैं, मानांतिक उपपाद वगैरह। तो यहाँ अभी बात चल रही है सासासन से लेकर पांचवें गुणस्थान तक के तिर्यंचों की। उसमें हमने कल पढ़ा था स्वस्थान स्वस्थान राशि जो है वो बहुभाग है, संख्या की बात चल रही है, स्वस्थान स्वस्थान राशि बहुभाग है। फिर वहाँ जो अवगाहना है एवरेज, उससे गुणा करेंगे उसको, तो फिर उसका प्रमाण आएगा क्षेत्र का। अब यहाँ हम 68 पृष्ठ पर, कल हमने पढ़ा था कि इसी प्रकार, यानी सासाधन की बात उन्होंने बता दी, और इसी प्रकार सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि और संयता संयत, इनका भी समझना स्वस्थान स्वस्थान के बारे में, ये बात उन्होंने बता दी। उस गुणस्थान की जितनी राशि होगी उसको अवगाहना से गुणा करेंगे तो उनका क्षेत्र होगा। तो वो चार लोगों की अपेक्षा कितना है, तो उन्होंने बताया था कि चार लोगों के असंख्यात भाग है और 2.5 द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र उनका पाया जाता है। अब हम यहाँ तक आए थे नीचे, इसी प्रकार नीचे से तीसरी लाइन, इसी प्रकार असंयत सम्य दृष्टि और संयता संयत तिर्यंचों के मारणांतिक समुद्घात के विषय में कहना चाहिए। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब उपपाद को प्राप्त सासाधन समय दृष्टि तिर्यंच कितने क्षेत्र में रहते हैं, उन्होंने मारणांतिक के बारे में तो बता दिया। हाँ, सम्यक मिथ्या दृष्टियों के मारणांतिक समुद्घात नहीं होता, किसी भी गति का क्यों न हो, तीसरे में तो मरण ही नहीं है, तो मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होगा और उपपाद भी नहीं होगा। अब कहते उपपाद को प्राप्त सासाधन सम्यक दृष्टि तिर्यंच कितने क्षेत्र में रहते हैं। नारकियों का जब हम देख रहे थे तब देखा कि नारकियों में सासाधन में उपपाद वाला वो पद ही नहीं होगा, क्योंकि सासाधन वाला मरकर सासाधन के साथ वो नरक में नहीं जाता है। अब यहाँ तिर्यंचों की बात हो रही है, तो तिर्यंचों में तो सासाधन वालों को तो उपपाद वाला क्षेत्र है, तो वो कितना है, तो सामान्य लोक आदि चार लोकों के असंख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र में, क्योंकि सासाधन वाले संयुक्त पंचेंद्रिय, तो इसलिए वो असंख्यात वे भाग क्षेत्र में, और 2.5 द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ पर सासादन सम्यक दृष्टि तिर्यंचों की उपपाद राशि का प्रमाण लाने पर, उपपाद राशि यानी वो उत्पन्न होने का समय वाली वो राशि लाने पर, मूल राशि को आवली के असंख्यातवें भाग से भाजित करने पर उत्पन्न होने वाली सासादन सम्यक दृष्टि राशि होती है। मूल जो राशि है उसको आवली के असंख्यातवें भाग से भाग देंगे। पुनः एक दूसरे आवली के असंख्यातवें भाग से भाजित करने पर और एक का मुक्त भागार से गुणित करने पर, इसका अर्थ है पहले आवली का असंख्यातवां भाग का भाग देना, एक भाग आया, फिर वो एक भाग का फिर आवली के असंख्यातवें भाग से भाग देकर एक कम आवली के असंख्यातवें गुणा करना, यानी उसका बहुभाग लेना, असंख्यातवां बहुभाग। तो क्या होगा, विग्रह गति में मारणांतिक समुद्घात से उत्पन्न होने वाली जीव राशि है, बहुभाग वाली। देखो मारणांतिक समुद्घात वाली जो राशि है उसमें से वो कैसे निकाली, तो पहले आवली का असंख्यातवां भाग से भाग दिया, फिर वो पूरी मारणांतिक राशि आई, फिर उसके आवली का असंख्यातवां भाग से भाग देकर बहुभाग है वो विग्रह गति वाली मारणांतिक। मारणांतिक में दो, एक सीधी गति से जाने वाले और एक मोड़ वाली गति से, तो मोड़ वाली में तो असंख्यात बहुभाग है। और आगे क्या लिखा है, उत्पन्न होने वाली राशि के, नहीं वो यहाँ लिखा नहीं उन्होंने, खाली विग्रह गति में मारणांतिक समुदाय से उत्पन्न होने वाली जीव राशि है। अब उत्पन्न होने वाली राशि के, ये उपपाद की बात चल रही है इसलिए उसकी बात यहाँ ले रहे, उत्पन्न होने वाली राशि के यानी उपपाद राशि के संख्यात बहुभाग प्रमाण जीव मारणांतिक समुद्घात करके उत्पन्न होते हैं, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं, इसलिए इसको जानकर कथन करना चाहिए, किंतु इस विषय में कोई मध्यम नियम नहीं है, यानी ऐसा कोई नियम नहीं पाया जाता, परंतु कितने आचार्य कहते हैं कि मेजॉरिटी मारणांतिक समुद्घात करके उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो विग्रह गति वाले को असंख्यात बहुभाग वाला कहा था। विग्रह गति से उत्पन्न होने वाले मारणांतिक, मारणांतिक में जो विग्रह गति करके आते हैं वो मारणांतिक, और सीधी गति से आते हैं वे मारणांतिक। ऐसे मारणांतिक में दो भेद, पहले असंख्यात बहुभाग विग्रह गति वाला मारणांतिक देखा, अब हम जो यहाँ आए हैं पांचवी लाइन के अंत में, इसे आवली के असंख्यात भाग से भाजित करने पर रुजु गति से आने वाली राशि का प्रमाण है ना। यह उपपाद राशि की बात चल रही है, तो उत्पन्न होने वाले कैसे कैसे आए, कोई मारणांतिक समुदाय करके आए हैं, उसमें से भी कोई विग्रह गति वाले मारणांतिक है और कोई रुजु गति से आए हुए हैं, ऐसा नहीं है, समुद्घात दोनों भी कर सकते हैं। अब देखो आगे, प्रत्रांगुल के संख्यातवे भाग से राजू को गुणित करके जो लब्ध आवे उसे इस राशि का गुणकार स्थापित करने पर उपपाद क्षेत्र होता है। यानी वो उपपाद जो राशि है, उपपाद राशि को अवगाहना जो है, और उपपाद में उसको उसका क्षेत्र भी लिया, तो प्रत्रांगुल के संख्यातवे भाग से राजू को गुणित किया। यहाँ पर अपवर्तना पहले के समान जाननी चाहिए, इसी प्रकार असंयत समय दृष्टि तिर्यंचों का उपपाद जानना चाहिए। तिर्यंचों में भी चौथे गुणस्थान के साथ जन्मने वाले जीव है ना, थोड़े है मगर है, इतनी विशेषता है कि उपपाद में असंयत समय दृष्टि तिर्यंच संख्यात ही होते हैं, यानी सम्यक्त के साथ तिर्यंचों में जन्मने वाले जीव संख्यात है। क्यों, हाँ कृतकृत्य वेदक या क्षायिक, और वो कहाँ से आएंगे, मनुष्य में से, क्योंकि जिन मनुष्यों ने सम्यक दर्शन के पहले तिर्यंच आयु का बंद किया है, ऐसे मनुष्य सम्यक दृष्टियों के बिना दूसरे सम्यक दृष्टियों का तिर्यंचों में उपपाद नहीं होता। यानी मनुष्य सम्यक दृष्टि मरकर ही, और वो भी जिन्होंने पूर्व में तिर्यंच आयु बांधी थी सम्यक होने के पूर्व, वे ही यहाँ जन्मेंगे, इसलिए वो संख्यात है। अब इनकी अवगाहना का गुणकार भी संख्यात प्रत्रांगुल प्रमाण अथवा एक प्रत्रांगुल प्रमाण मात्र है, वो उसका प्रमाण बताए एक जीव का, तो उस राशि को गुणित करेंगे। तो राशि को गुणित करेंगे तो संख्यात प्रत्यंगुली आएंगे। सम्यक मिथ्या दृष्टि और संहिता संहित तिर्यंचों के उपपाद नहीं होता, तो क्या उनमें मारणांतिक होता है?
नहीं।
किस में नहीं होता? तीसरे में,
सम्यक मिथ्या।
और संहिता संहित में, संहिता संहित में मारणांतिक होगा कि नहीं होगा? मेरा प्रश्न क्या है, संहिता संहित में मारणांतिक समुदाय है कि नहीं है?
है।
मारणांतिक समुदाय मरण के पहले होता है, हमने तो बराबर है, आपने बताया। हाँ, मरेगा। अब हम अगला सूत्र देखते हैं। पंचिंद्रिय तिरिक्ख, पंचिंद्रिय तिरिक्ख पज्जत्त, पंचिंद्रिय तिरिक्ख जोणी निसु, मिच्छा इट्ठी पहुड़ी, जाव संजदा संजदा, केवड़ी खेतते, लोगस असंख्ये जदि भागे। पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी जीवों में मिथ्यादृष्टि गुणस्थान से लेकर संहिता संयत गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान के तिर्यंच कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते। हम जब सामान्य तिर्यंचों की बात की थी तो वो कितने क्षेत्र में रहते हमने देखा था? पूरा लोक में, क्योंकि वहाँ एक इंद्रिय है ना। अब यहाँ पंचेंद्रियों की बात है तो लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं। अब 70 पृष्ठ पर 70। यह भी सूत्र देशामर्शक ही है। सूत्र में तो शॉर्ट में बता दिया है, परंतु उसमें वो जो पद लगाए हैं स्वस्थान स्वस्थान विहारत वगैरह, वो तो समझना है हमको, तो वो समझाते हैं। देशामर्शक ही है क्योंकि इसमें अनेक सूत्रों का अर्थ संग्रहित है, ग्रहित को गृहित करना, वहां यानी इकट्ठा है। सूत्र में तो बहुत शॉर्ट में बता देते थे, पहले आचार्यों का और अन्य जीवों का भी अभ्यास होता था तो एक सूत्र बता देते थे तो वो सब अपना आप समझ जाते थे। अभी हमको समझाने पर भी नहीं समझते, ऐसी बात है। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात को प्राप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्यादृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? तो सामान्य लोक, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक, इन तीन लोकों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में, तिर्यक लोक के संख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। तिर्यक लोक में तो बहुत जगह, वो तो समुद्रों को छोड़कर सब द्वीपों में वगैरह रहते ना। यहाँ पर पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त जीव राशि को छोड़कर पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त राशि का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अपर्याप्तों की अवगाहना से पर्याप्तों की अवगाहना असंख्यात गुणी पाई जाती है। पर्याप्तों की अवगाहना बहुत बड़ी है। यहाँ पर स्वस्थान स्वस्थान राशि मूल राशि के संख्यात बहुभाग प्रमाण होती है। ये हमेशा भी साधारण अंदाजा आ गया हमें, हम पहली जो स्वस्थान स्वस्थान राशि होती है वो पूरी राशि के संख्यात बहुभाग प्रमाण है। शेष राशियां मूल राशि के संख्यात वे भाग मात्र होती है। शेष राशि यानी विहारवत वाली, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात आदि। यहाँ पर अवगाहना का गुणकार संख्यात घनांगुल प्रमाण है। तिर्यंच जो पंचेंद्रिय पर्याप्त है उसका अवगाहना का प्रमाण संख्यात घनांगुल लिया। यहाँ एवरेज निकालो ना, मत्स्य महामत्स्य वगैरह बड़ी बड़ी अवगाहना के हैं और वो हाँ मनुष्य लोक वाले जो बीच वाले जो है वो कम अवगाहना वाले हैं, तो एवरेज संख्यात घनांगुल प्रमाण है। अपवर्तना का कथन जानकर करना चाहिए। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त तथा पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी मिथ्यादृष्टियों की स्वस्थान स्वस्थान राशि आदि समझना चाहिए। ये पहले हमने संख्या प्ररूपणा में जो उनकी राशियां देखी थी वो उनके बारे में भी ऐसा ही समझना, जो राशि का बहुभाग जो है संख्यात बहुभाग वो स्वस्थान वाला होगा। वैक्रियक समुद्घात को प्राप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्यादृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? तो सामान्य लोक आदि चार लोकों के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तीर्यंच पर्याप्त तथा पंचेंद्रिय तीर्यंच योनिनी मिथ्यादृष्टियों का वैक्रिक समुद्घातगत क्षेत्र जानना चाहिए। मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त पंचेंद्रिय तीर्यंच, वो पर्याप्त शब्द नहीं चाहिए, वहां निकाल देना। मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त पंचेंद्रिय तीर्यंच मिथ्यादृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? तो कहते हैं सामान्य लोक, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक, इन तीन लोकों के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि पंचेंद्रिय तीर्यंच पर्याप्त राशि का भागहार पल्योपम के असंख्यात भाग मात्र पाया जाता है। वैक्रिक रिद्धि हम कहेंगे नहीं, उनको विक्रिया कर सकते हैं औदारिक शरीर वाले, वो तो हमने वायु कायिक में भी देखी थी, अग्नि कायिक में भी देखी थी, यहाँ पंचेंद्रिय भी कर सकते हैं, वो तो भोग भूमि के भी पंचेंद्रिय, पहले हमने पढ़ा था इसको, जैसे मनुष्य भी कर सकते हैं वैसे इनके भी विक्रिया पाई जाती है, औदारिक शरीर के भी किन्हीं जीवों की विक्रिया पाई जाती है, तो उसको ये वैक्रिक समुद्घात कहते हैं। शंकाकार पूछता है यह कैसे, ये राशि कैसे निकाली, ऐसे पूछता है, ये जो अभी पल्ले का असंख्यात भाग वाला भाग दिया था वो राशि कैसे निकाली, तो समाधान करते हैं। संख्यात वर्ष की आयु वाले तीर्यंचों के उपक्रमण काल रूप आवली के असंख्यात भाग से त्रैराशिक क्रम से भाजित करने पर प्रत्येक समय में मरने वाले पंचेंद्रिय तीर्यंच मिथ्यादृष्टियों का प्रमाण होता है। क्या कहते हैं, संख्यात वर्ष की आयु है तीर्यंचों की और उपक्रमण काल यानी निरंतर उत्पन्न होने का काल, लगातार प्रत्येक समय में कोई ना कोई जीव तीर्यंचों में उत्पन्न हो गए तो वो काल है आवली का असंख्यात भाग, तो उस राशि को आवली के असंख्यात भाग से भाजित करने पर प्रत्येक समय में मरने वाले पंचेंद्रिय तीर्यंच मिथ्यादृष्टियों का प्रमाण प्राप्त होता है। अब यहाँ पर उपक्रमण काल के लाने की विधि को कहते हैं, ये उपक्रमण काल तो बता दिया आवली का असंख्यात, वो कैसा लाया उसकी बात यहाँ बताते हैं। संख्यात आवलियों के भीतर यदि आवली का असंख्यात भाग प्रमाण निरंतर उपक्रमण काल प्राप्त होता है, क्या कहते हैं, एक आवली के असंख्यात भाग तक निरंतर उसमें कोई ना कोई जीव उत्पन्न होगा, फिर बीच में गैप पड़ेगा, तो संख्यात आवलियों में आवली का असंख्यात भाग प्रमाण उपक्रमण काल है, बीच में अंतर है, फिर उपक्रमण काल, फिर अंतर, ऐसा होगा ना, तो उपक्रमण और अनुपक्रमण रूप आयु की स्थिति के भीतर यानी टोटल आयु के भीतर, उपक्रमण और अनुपक्रमण इसके टोटल करना है यानी पूरी आयु के भीतर कितने उपक्रमण काल प्राप्त होंगे, 5, 10, 50 जितने उपक्रमण काल प्राप्त होंगे, इस प्रकार आवली के असंख्यात भाग प्रमाण फल राशि से उपक्रमण और अनुपक्रमणात्मक आयु की स्थिति रूप इच्छा राशि को गुणित करके और संख्यात आवली प्रमाण प्रमाण राशि का भाग देने पर आवली के असंख्यात भाग मात्र उपक्रमण काल प्राप्त होता है। ये त्रैराशिक कैसा करना ये उन्होंने बता दिया। इसी प्रकार संख्यात वर्ष की आयु वाली अन्य सांतर राशियों का भी उपक्रमण काल ले आना चाहिए। सांतर यानी अंतर वाली राशि, बीच बीच में अंतर है वो राशि। पुनः यहाँ मारणांतिक राशि का प्रमाण लाना है, इसलिए पहले तो उन्होंने पंचेंद्रिय तीर्यंच पर्याप्त राशि लाई, पंचेंद्रिय तीर्यंच मिथ्या दृष्टि में से पंचेंद्रिय तीर्यंच पर्याप्त कितने वो देखे, फिर उसमें वो उपक्रमण काल वगैरह से भाग दिया। अब कहते कि मारणांतिक राशि कितनी है उसको लाना है, इसलिए एक दूसरा पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण भागार स्थापित करके यानी पल्ले और एक बार पल्ले के असंख्यात भाग से भाग देना और एक कम उसी से गुणित करके यानी पल्ले के असंख्यात विभाग में से एक कम करके गुणा करना, तो क्या होगा? असंख्यात बहुभाग होगा। राजू प्रमाण आयाम की अपेक्षा स्थित राशि लाना इच्छित है। तो ये मारणांतिक वाली राशि हमें मिल जाएगी। इसलिए एक दूसरे पल्योपम के असंख्यात विभाग रूप भागहार स्थापित करना चाहिए। यहाँ पुनः यहाँ पर मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त जीव राशि का संचय इच्छित है। एक समय में जो जीव राशि इतनी है, दूसरे समय में, तीसरे समय में, इसलिए कहते हैं मारणांतिक संबंधी उपक्रमण काल आवली के असंख्यात विभाग से गुणित करके पुनः क्षेत्र लाने के लिए। अभी पूरा लगातार वो असंख्या समय ने आवली के असंख्यात विभाग जितने समयों तक लगातार उसमें है जीव, तो पूरा जीव कितने उसमें है? एक समय वाली राशि निकाली तो आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण समयों में कितनी राशि होगी? इस राशि को राजू से गुणित संख्यात प्रतरंगुलों से गुणित करने पर मारणांतिक क्षेत्र का प्रमाण होता है। यानी वो मारणांतिक राशि निकाली, फिर हमको घनफल निकालना है, तो कहाँ तक वो मारणांतिक समुदात करते हैं? तो उसके एक राजू मेजॉरिटी निकाली यहाँ तीरंचों की अपेक्षा, पंचेंद्रीय तीरंच एक राजू वाला, और उसको संख्यात प्रतरंगुलों से गुणित किया, क्योंकि वो मारणांतिक समुदाय ने प्रदेश ऐसे फैले हैं, तो लंबाई में तो उसको लिए, और फिर हाइट और विड्थ जितनी है उसको लेना, तो उसको संख्यात प्रतरंगुल मल्टीप्लाइड बाय राजू। इस क्षेत्र के प्रमाण से सामान्य लोक आदि तीनों ही लोकों के भाजित करने पर पल्योपम का असंख्यात भाग आता है। यानी ये क्षेत्र कितना है? तो तीन लोकों के असंख्यात भाग है। इसलिए सामान्य लोक आदि तीन लोकों के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में मारणांतिक समुद्घातगत पंचेंद्रिय तिर्यंच जीव रहते हैं, वो पर्याप्त निकाला है उन्होंने, यह बात सिद्ध हुई। तथा मारणांतिक समुद्घातगत पंचेंद्रिय तिर्यंच जीव, यहाँ भी पर्याप्त निकालना शब्द, तिर्यक लोक और मनुष्य लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। देखो तिर्यंच तो अभी पंचेंद्रिय तिर्यंचों की बात चल रही है, वो तो रहते तो तिर्यक लोक में, परंतु मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा तिर्यक लोक के असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, ऐसा कहा, क्योंकि मारणांतिक समुद्घात में उनके प्रदेश फैलते हैं, अभी सातवें नरक तक फैलेंगे, वहां तक किसी ने मारणांतिक समुद्घात किया है तो मेजॉरिटी तो होगी नहीं, वो सात राज्यों तक ऐसे फैलेंगे, और फिर आड़ा जितना यथा योग्य है वो भी फैलेगा। तो इसलिए कहते हैं तिर्यक लोक के असंख्यात गुणे क्षेत्र में। इसी प्रकार मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनियों का कथन करना चाहिए। पहले उन्होंने सामान्य पंचेंद्रिय तिर्यंचों में लिया, फिर उसमें पर्याप्त और योनिनी सबको ले लिया। अब उपपाद को प्राप्त हुए, यानी अभी तिर्यंच में जो जन्मे हैं उसकी बात है। उपपाद को प्राप्त हुए पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्यादृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? सामान्य लोक आदि तीन लोकों के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ पर उपपाद क्षेत्र के लाते समय मारणांतिक क्षेत्र के समान कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि प्रथम दंड का उपसंहार करके दूसरे दंड में स्थित जीवों का प्रमाण लाना इच्छित है। देखो कोई जीव यहाँ से यहाँ जन्मा, मान लेते उसने ऐसे जो कुछ मारणांतिक समुदात किया और यहाँ जन्मने वाला है, अभी यहाँ पर उसका मरण हुआ तो उसने इस दंड का उपसंहार किया, वो संकोच हो गया उसका, समेट लिया ना, यहाँ का शरीर छोड़ दिया, तो एक समय में करके ये सब प्रदेश भी उपसंहार हो गए। तो उपपाद के समय अभी इतने फैले हुए प्रदेश उसके, इसलिए ये दंड को लिया है मुख्य, द्वितीय दंड को, उसका क्षेत्र तभी इतना है फैला हुआ। यहाँ क्या लिखा? प्रथम दंड का संहार किया, देखो 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 सेकंड लाइन यहाँ पर उपपाद क्षेत्र कहलाते समय मानांतिक क्षेत्र के समान कथन करना चाहिए, इतनी विशेषता है। प्रथम दंड का उपसंहार करके दूसरे दंड में स्थित जीवों का प्रमाण लाना इच्छित है, इसलिए पल्ल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण एक दूसरा भागार स्थापित करना चाहिए, क्योंकि असंख्यात योजन आयाम वाले दूसरे दंड में स्थित जीव बहुत नहीं पाए जाते हैं, उसका प्रपोर्शन कम है संख्या। यह एक समय में संचित जीव राशि है, इसलिए आवली के असंख्यातवे भाग से गुणकार के अपनित करने पर राजू से गुणित संख्यात प्रतरांगुल गुणकार होता है। ये जो राशि लाएंगे हम ज्यादा नहीं है, फिर भी उसको राजू गुणा संख्यात प्रतरांगुल से गुणा करना राशि को, तो हमें उपपाद का क्षेत्र मिलेगा। इसी प्रकार उपपाद को प्राप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनियों का कथन करना चाहिए। उपपाद की अपेक्षा शेष गुणस्थानों का कथन तिर्यंच ओघ के कथन के समान जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि योनिनी तिर्यंचों में असंयत समय दृष्टियों का उपपाद नहीं होता। क्यों नहीं उपपाद होता? वो तो स्त्री पर्याय में जन्मता नहीं समय दृष्टि, तो उपपाद यानी जन्मने की बात है। इसका विशेषार्थ फिर करें, यहाँ पर जो प्रथम दंड आदि का कथन किया गया है उसका अभिप्राय यह है कि विग्रह गति में मरण क्षेत्र से लगाकर प्रथम मोड़े तक जीव का जो सीधा गमन होता है वह प्रथम दंड है। ये अभी हमने देखा था ना, मान लेते यहाँ वो उसका मरण हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक प्रथम दंड, पहले मोड़े तक प्रथम दंड, तथा प्रथम मोड़े से लगाकर द्वितीय मोड़े तक जीव का जो सीधा गमन होता है वह द्वितीय दंड, तृतीय दंड, एक मोड़े से दूसरे मोड़े तक उसको कहते हैं दंड। इसी प्रकार तीसरा दंड भी समझना चाहिए, ये उन्होंने दंड का अर्थ बता दिया। अभी उसके तो उपसंहार करता है, संकोच हो जाते हैं। देखो मानांतिक समुदाय में क्या हुआ है, अभी यहाँ का जीव अभी मरा नहीं है, अभी अंतर्मूर्त के अंदर ही मरने वाला है, तो मरण के पहले ही वो मरण के बाद वहां पहुंचना था तो पहले ही वहां पहुंच जाते उसके आत्मा प्रदेश, अभी मूल शरीर को छोड़ा नहीं है, अभी ऐसे ही फैले हुए रहेंगे कुछ काल तक, अंतर्मूर्त छोटा अंतर्मूर्त काल तक, फिर यहाँ से प्रदेश हो उसके, ये शरीर छोड़ दिया उसने, फिर भी उसके प्रदेश ऐसे फैले रहेंगे एक दो समय तक, एक दंड को उपसंहार कर लिया तो दूसरे दंड को तीसरे दंड को इस तरह से, इसलिए उपपाद वाला वो क्षेत्र बड़ा लिया हुआ। आपको याद होगा कि सीधे गमन करने वाले उपपाद वाले का क्षेत्र बहुत कम होता है, ऐसा हमने देखा था, उसके लिए कारण ये विग्रह गति से आए हुए को क्यों नहीं होता है, ये अभी मुझे भी अभी स्ट्राइक हुआ कि हमने पहले देखा था सीधी गति से जो आता है रुजु गति से उसकी अवगाहना कम है, उसका क्षेत्र संकोच हो जाता है, कम होता है, और ये विग्रह गति से आए हुए उसके प्रदेश अभी फैले हुए, अभी इसको समेटने में टाइम लगेगा दो तीन समय, इसलिए उसका क्षेत्र भी बड़ा है। अब आगे पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, अवगाहना के ऊपर समुद्घात करे नहीं करे ये बात नहीं है, एकेंद्रिय भी करते हैं, हमने देखा है एकेंद्रियों के भी समुद्घात पाए जाते हैं। देखो अब आगे दसवां नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। आपका प्रश्न था हाँ सूक्ष्म अवगाहना वाले वो समुद्घात नहीं करते होंगे, तो ऐसा नहीं है, करते हैं। हाँ वो उसकी बात मैंने इसलिए नहीं निकाली, सबसे छोटे में छोटी अवगाहना किसकी होती है, हाँ लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद, वो भी कब मालूम है आपको? दूसरा नहीं, तीसरा, मगर कौन से वाला जीव लेना, देखो लगातार अपर्याप्त अवस्था में जो जन्मेगा, लब्धि अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त, निगोद वाली बात है, तो 6012वां उसका जन्म होगा, आखिरी अपर्याप्त, लगातार अपर्याप्त वाला आखिरी, और वो भी रुजु गति से आने वाला जीव, और उसके तीसरे समय में मिनिमम अवगाहना होती है। हाँ, तीसरे समय वो उसके ये भी देखो बताया था, आयताकृति, फिर चौकोनी होता है, फिर गोल होता है, तो उसके लिए उसके अवगाहना कम से कम हो जाती तब। ये विषय यहाँ नहीं था ना, इसलिए मैंने निकाला नहीं। चलो आपने विषय निकाला तो हाँ हाँ, रुजु गति से आता है, और ये तो अभी हमने देखा था ना, विग्रह गति से आए हुए के वो आत्म प्रदेश को संकोच करने में टाइम लगता है, मारणांतिक समुद्घात करके जो विग्रह गति से आए हैं उसकी बात है, डायरेक्ट जो विग्रह गति से आए उसकी बात नहीं है। हाँ, ये पहला समय इस यहाँ है उसका, दूसरा समय यहाँ, वो चालू हो गया उसकी, वहाँ शरीर ग्रहण वगैरह चालू हो गया, इसलिए वहाँ हाँ उसकी जो अवगाहना यथा योग्य वो होती है। ये मारणांतिक समुद्घात और विग्रह गति करने वाले उनको एक एक दंड को संकोच मिलने में उसको टाइम लगता है, इसलिए इसकी अवगाहना बड़ी है। पंचेंद्रिय, अभी ये ऊपर हम पढ़ेंगे 73 पृष्ठ पर 10 नंबर का सूत्र, पंचेंद्रिय तिरिक्ष अपज्जत्ता, किसको लिया अभी, अपर्याप्तों, लब्धि अपर्याप्तों को, पंचेंद्रियों में सभी को नहीं लिया, पंचेंद्रियों के अपर्याप्त, केवड़ी खेते लोगस्य असंख्य यदि भागे, पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्त जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। अब इस देशामर्शक सूत्र का अर्थ कहते हैं, यानी उसको भी खोलकर बताएंगे, स्वस्थान स्वस्थान वो सब ऐसा, स्वस्थान स्वस्थान वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात को प्राप्त हुए पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्त जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, किस किस को छोड़ा, तीन को ही लिया, हाँ विहारवत नहीं लिया और वैकृत नहीं लिया, हाँ वो बाकी तो कोई प्रश्न ही नहीं है, तो यहाँ विहारवत क्यों नहीं लिया, अपर्याप्त है, तो क्या हुआ, हाँ तो हुआ क्या, पन कौन से नाम कर्म का उदय नहीं है, विहायोगति, विहायोगति नाम कर्म का उदय नहीं है, ये मूल कारण देखो क्या, इसलिए तीन ही लिए अभी यहाँ तक, तो क्या कहते हैं, कितने क्षेत्र में रहते हैं, सामान्य लोक आदि चार लोकों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि उच्छेद घनांगुल को पल्लोपम के असंख्यातवे भाग से खंडित करके, यानी घनांगुल डिवाइडेड बाय पल्ले का असंख्यात भाग, जो एक लब्ध आवे तत्प्रमाण पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्त जीव की अवगाहना है। पंचेंद्रिय तिरियंचों की अवगाहना अपर्याप्त वाले कितनी है उसको बताया, तथा यानी घनांगुल का असंख्यात भाग, तथा पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्त जीव अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्त जीवों के विहारवत स्वस्थान और वैकृत समुद्घात नहीं पाया जाता, क्योंकि वो पर्याप्ति अभी पूरी नहीं हुई है, तो ये विहायोगति नाम कर्म का भी उदय नहीं है, अपर्याप्त जीव है ना, पंचेंद्रिय अपर्याप्त तो इसमें हो गए ना, कर्म भूमि जो है वहाँ पर स्वयं रोमन द्वीप है समुद्र, तो उनके वैकृत समुद्घात नहीं पाया जाता, मारणांतिक समुद्घात, ये मारणांतिक समुद्घात तो पाया जाएगा भी, अपर्याप्त जीव है तो मरण के पहले उनके भी हो सकता है, मारणांतिक समुद्घात और उपपाद को प्राप्त हुए पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्त जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, तो सामान्य लोक आदि तीन लोकों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि राशि के भागहार रूप होकर यथाक्रम से अर्थात मानांतिक समुद्घात की अपेक्षा दो बार पल्ल्योपम के असंख्यातवें भाग और उपपाद की अपेक्षा तीन बार पल्ल्योपम का असंख्यातवा भाग पाया जाता है। यानी मानांतिक समुद्घात करने वाली राशि कितनी है, मूल राशि को दो बार पल्ले का असंख्यातवा भाग देना, उपपाद की राशि कितनी है, तीन बार पल्ले का असंख्यातवा भाग देना, तथा तिर्यक लोक और मनुष्य लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में मारणांतिक समुद्घात और उपपाद के प्राप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त जीव रहते हैं। इस प्रकार इसका व्याख्यान सुगम है। हाँ, ऊपर यानी ऊपर टोटल नहीं दिए थे उन्होंने, पहले स्वस्थान वेदना और कषाय कितने हैं, तो चार लोकों के असंख्यात्व क्षेत्र में उसको एक ग्रुप क्यों बनाया, चार लोकों के असंख्यात्व भाग क्षेत्र में लेना था। अब मारणांतिक और उपपाद में कितना लिया, तो तीन लोकों के तो असंख्यात्व भाग, परंतु तिर्यक लोक के असंख्यात गुणा क्षेत्र में। देखो मारणांतिक में क्या लेना, वहां से मरकर अन्यत्र जाने वाला, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त है, कहां कहां जाएगा मारणांतिक करके,
हाँ तो पर्याप्त है,
पूरे लोक में कहीं भी जाएगा, एक इंद्रिय में नहीं जाएगा, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त है, वो तो मरकर तो कहीं जाएगा, सूक्ष्म में जन्मेगा या बादल एक इंद्रिय में जन्मेगा या मनुष्य में जन्मेगा, देव नारकी को छोड़कर कहीं भी जा सकता है, तिर्यंच में तो पूरी वैरायटी अवेलेबल है उसकी। तो मानातिक समुद्घात करके तो लोक के कोई भी छेड़े में जा सकता है ना, वो अभी एक इंद्रिय में गया तो, इसलिए तिर्यक लोक का असंख्यात गुणा क्षेत्र कहा है, वहां तक उसके प्रदेश फैलेंगे, ख्याल है ये बात। और उपपाद कहीं से भी वहां जन्मा है, तो वो भी अभी हमने देखा था, विक्रिया करके जो उपपाद करेगा उसके भी दंड, जो दूसरा या तीसरा जो दंड है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है, इसलिए उसकी अपेक्षा भी तिर्यक लोक का असंख्यात गुणा भाग है उसका, यानी क्षेत्र, भाग नहीं क्षेत्र, ख्याल है कुछ कुछ क्या नहीं। देखो अभी यहाँ पंचेंद्रिय अपर्याप्त की बात है, स्वस्थान में तो जहाँ रहते हैं वो क्षेत्र लेते हैं, विहारवत की यहाँ बात नहीं है, वेदना और कषाय बोली भी बात यहाँ बता दी। अब कहते मारणांतिक कौन है, मारणांतिक यानी वो अपर्याप्त जीव मरकर कहाँ कहाँ जन्मेगा, वहाँ तक उसके फैलेंगे प्रदेश। पंचेंद्रिय अपर्याप्त है तो अपर्याप्त जीव ना देव में जाएगा, ना नरक में जाएगा, ना भूभूमि में जाएगा, नहीं तो कहाँ जा सकता है, तो तिर्यंचों में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक कहीं भी जन्मेगा या मनुष्य में भी जन्म सकता है, बराबर है ना। तो तिर्यंच राशि जो एक इंद्रिय, तो पूरे लोक में कहीं भी उत्पन्न हो सकता है, कोई वायु का एक होगा, कभी कल हमने जो वात वाले लिए थे सभी, कहीं भी उसका जन्म होने वाला है, तो वहां तक उसके मारणांतिक में प्रदेश फैलेंगे। इसलिए ऐसे जीव तो अनेक है, तो इसलिए उनका पूरा जो क्षेत्र है वो असंख्यात गुणा क्षेत्र बताया। अब दूसरी बात उपपाद की, उपपाद की यानी पंचेंद्रियों में जन्मने वालों की, पंचेंद्रिय अपर्याप्त में जन्मने वाले, तो जन्मने वाले भी हमने देखा था तिर्यंचों में से वह अपर्याप्त में जन्मेंगे या मनुष्यों में अपर्याप्त, मनुष्यों में से अपर्याप्त में जन्मेंगे, तो अभी वो तिर्यंच तो पूरे लोक में कहीं भी है एक केंद्रीय राशि, उसमें से वो तिर्यंच अपर्याप्त हुआ तो वहां से उसके प्रदेश फैले हैं, उपपाद में हमने देखा था। मारणांतिक में तो जितने उसके मोड़ है उतने प्रदेश फैले हैं, मारणांतिक में यहाँ मरा जीव और उसके प्रदेश आगे तक फैले हैं, और उपपाद की अपेक्षा जब हम प्रदेश देखते हैं तब ये हमारी बात पंचेंद्रिय अपर्याप्त की चल रही है। पंचेंद्रिय अपर्याप्त का उत्पाद मारणांतिक यहाँ का उसका पहले भव का आयु यहाँ समाप्त होगी, तो ये पहला एक दंड इसको कहते हैं मोड़े तक, पहले मोड़े तक वो उसने संकोच कर लिया, तभी उपपाद के समय उसके प्रदेश इतने सारे फैले हुए। नहीं नहीं मानांतिक समय, मारणांतिक में तो इतने थे, मारणांतिक समुद्रात करने वालों के तो इतना क्षेत्र है, परंतु अभी उपपाद, अभी वात मले से, कोई वात मले से, कोई वहां का वायु का एक जीव, अब ये पंचेंद्रिय अपर्याप्त में जन्मा है। अभी हमारा जो विषय चल रहा है तो उसके प्रदेश इतने फैले पहले समय में, क्योंकि उसको एक एक दंड समेटने के लिए उसको समय लगता है। ये सभी में होता है, मारणांतिक समुदात वगैरह सब होता है। क्षेत्रांतर का अर्थ क्या है? बिना, देखो आपका प्रश्न है, तिर्यंच में उसने जन्म लिया, तिर्यंच से तिर्यंच में जन्म लिया, तो क्षेत्रांतर करेगा कि नहीं करेगा? तो बिना कहे वो कहाँ कैसे जन्मेगा? कहीं भी जन्म सकता है, उधर ही जन्मने का कोई नियम नहीं है। अभी यहाँ इस क्षेत्र में कोई जीव मरा और वो सातवें नरक के नीचे वाला वायु का एक होने वाला है, तो वहां तक उसके प्रदेश फैलेंगे मारणांतिक में। मान लेते कोई सीधी गति से गया तो भी वो क्षेत्रांतर करके जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों? नहीं, वहीं पर उसी क्षेत्र में जन्मने का नियम ही नहीं है, उसके तो पूरे वहां से एकदम ऑप्शंस है, अनंत अलग अलग जो कोई वैरायटी है जीवों की, कहीं भी जा सकता है वो, और हो सकता है उसी क्षेत्र में जन्मे, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मैंने क्या बोला, कहीं से भी आया है, आया है, मगर उसका पहला दंड संकोच लिया है, उसके प्रदेश बाकी फैले हुए मध्यभूमि मध्यलोक तक। इसीलिए तिर्यक लोक के असंख्यात गुणा क्षेत्र उपपाद का भी बताया, ये दंड का संकोचना, ये उसमें मूल बात लेना है। विग्रह गति से आया हुआ है, अभी वायु का एक जो अभी यहाँ मध्यलोक में, तिर्य पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त नहीं, यह मध्यलोक में है, परंतु वो आया कहाँ से है? मान लेते नीचे से, एकदम तल से आया लोकाकाश के, तो सात राजू तक उसके फैले हैं, और फिर और पहला दंड, दूसरा दंड, तीसरा दंड, कहीं जो जाना है उसको, तो पहला दंड तो समेट लिया, दूसरा तीसरा जो कुछ यथायोग्य वो दंड भी फैले हुए पूरे, तो उसका जन्मने का वो पहला समय है, अगली आयु का पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त आयु का उसका पहला समय है, तो उसके ये इतने पहले हुए, तो उसका क्षेत्र इतना बड़ा कहलाएगा, जीव के प्रदेश इतने फैले हुए है कभी, और ऐसे कितने ही जीव एट ए टाइम करते हैं। ये पूरे लोकाकाश में मारणांतिक और उपवाद करने वाले पूरे फैले हुए कितने हो गए? प्रत्येक समय में अनंत जीवों का मरण हो रहा है, उसके पहले अब कितने ही जीव मारणांतिक समुदात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश ये प्रदेश फैले हुए सब जगह। जरा जरा देखो, स्वस्थान की राशि है या टोटल जो जीव की राशि है, आपका प्रश्न ऐसा है, कहीं दो बार लिखा, कहीं तीन बार पल्ले के असंख्याते भाग से भाग देने को बताया है, वो क्यों? तो हमको जीवों की संख्या निकालनी है, इसलिए टोटल जीवों को हम पल्ले के असंख्याते भाग से भाग देते तो उतने जीव मानातिक समुदात करते हैं। अब उसमें से भी विग्रह गति से जाने वाले उनकी संख्या अलग है, फिर रुजुगति से जाने वाले की अलग है, उसमें भी उपपाद वालों की संख्या अलग है, इसलिए जहाँ जितना प्रोपोर्शन बताया है उसका उतना जानना चाहिए। देखो यहाँ बीच में लिखा है, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त जीवों के विहार व स्वस्थान और वैकरी समुदात नहीं पाया जाता, आगे भी पढ़ा था हमने ना, हाँ फिर पढ़ती हूँ। मानांतिक समुदात और उपपाद को प्राप्त हुए पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? तो सामान्य लोक आदि तीन लोकों के असंख्यातवे भाग क्षेत्र में रहते हैं, और क्योंकि राशि के भागहार रूप होकर यथाक्रम से, अर्थात मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा दो बार पल्योपम के असंख्यातवे भाग, यानी जब मारणांतिक की राशि निकालनी है तो मूल राशि को दो बार पल्ले के असंख्या भाग से भाग देना और उपपाद के लिए तीन बार पल्योपम का असंख्या भाग पाया जाता है तथा तिर्यक लोक और मनुष्य लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में मारणांतिक समुद्घात और उपपाद के प्राप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त जीव रहते हैं। अभी वो ख्याल में आए ना, मारणांतिक जब करते तो प्रदेश फैले हुए रहते हैं वो कुछ काल तक, इसलिए उनका क्षेत्र बड़ा हो जाता है। और जब उपपाद में पहला दंड संकोच लिया, उपसंहार हो गया उसका, समेट लिया, परंतु दूसरा और तीसरा जो दंड है वो अभी फैला हुआ है, इसलिए वहां उसका क्षेत्र उस अपेक्षा से निकालना। अब 11वां सूत्र मनुष्य गति के बारे में चलेगा। मनुष्य गति ये मनुष्य मनुष्य पज्जत मनुष्यनीसु मिच्छा इट्ठी पहुड़ी जाव अयोगी केवली केवड़ी खेते लोगस्य असंख्य यदि भागे। अभी इसको सहयोगी वाले को नहीं लेना, लोग के असंख्या तो भाग लिखा है ना, ये बिना समुदात वाले केवली को ले सकते हैं या दंड वाले को। देखो, मनुष्य गति में मनुष्य मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में मिथ्यादृष्टि गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान में जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, तो लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। देखो आपका प्रश्न है अपर्याप्त दशा में वापस मरण, यानी वो अपर्याप्त दशा, वो जो अपर्याप्त नाम कर्म वाले हैं उसकी बात कर रहे हैं ना, तो वो तो उपपाद से वहाँ तो उसके पर्याप्ति चालू हो गई, मान ले छह पर्याप्ति चालू हो गई, फिर भी उसका शरीर पर्याप्ति या पहली पर्याप्ति होने में एक अंतर्मूर्त काल है, हाँ उस काल में उसका मरण हो जाता है, फिर भी उसकी आयु अंतर्मूर्त मात्र होती ही है, ये बीच में यानी मारणांतिक में ही उसका और दूसरे आयु धारण करे ऐसी बात नहीं है। आपका ऐसा प्रश्न है विग्रह गति में जो तीन या चार समय है उसमें वो फिर मरा तो वहाँ नहीं मर सकता, अभी शरीर ग्रहण ही नहीं किया है उसने। अपर्याप्त अवस्था में भी शरीर ग्रहण का कुछ तो चलेगा ना, वहाँ मिश्र अवस्था है उसकी कुछ काल तक, हाँ असंख्यात समयों की वो भी अवस्था। देखो अब इस सूत्र का अर्थ, यानी वो मनुष्य गति संबंधी में सूत्र है ना, उसका अर्थ कहते हैं स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात और वैक्रिक समुद्घात को प्राप्त हुए मनुष्य पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनी मिथ्यादृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं। अभी क्षेत्र में जो सिमिलैरिटी इसलिए वो इतने पद लिए एक साथ, बाकी भी जो पद हो गए वो तो बाद में बताएंगे। एक साथ क्यों है, एक साथ क्योंकि वो चार लोक के कितने भाग में है वो बताने के लिए उनको एक साथ एक ग्रुप बनाया। तो सामान्य लोक आदि चार लोकों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में और मनुष्य क्षेत्र के संख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं, बराबर है, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य पर्याप्त मिथ्यादृष्टियों के क्षेत्र का ग्रहण किया है। शंका, अपर्याप्त मनुष्य जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, उनकी संख्या बता रहे, अपर्याप्त मनुष्यों की संख्या कितनी है असंख्यात है, पर्याप्त मनुष्यों की संख्या कितनी है संख्यात है और अपर्याप्त असंख्यात है, अतएव यहाँ उनके क्षेत्र का ग्रहण क्यों नहीं किया, क्योंकि इतने जीव है और हर एक की इतनी अवगाहना, तो वो क्षेत्र बड़ा हो जाता तो उसका क्यों नहीं लिया। उसका समाधान, नहीं, क्योंकि पर्याप्त मनुष्य का अवस्थान अंगुल के संख्यातवे भाग में अथवा संख्यात अंगुलों में पाया जाता है। पर्याप्त मनुष्यों की अवगाहना है वो अंगुल का संख्यातवा भाग या संख्यात अंगुल, ये प्रमाण अंगुल की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर अपर्याप्त मनुष्यों के क्षेत्र का ग्रहण नहीं किया है, यहाँ पर्याप्तों की बात चल रही है इस सूत्र में। अब कहते मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त हुए मनुष्य पर्याप्त मनुष्य और मनुष्य नहीं मिथ्या दृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं। अब मानातिक समुदाय में उनका क्षेत्र बड़ा हो जाएगा, क्या मनुष्य क्षेत्र इतना ही रहेगा कि लंबा भी होगा? लंबा भी होगा ना। हाँ, तो इसलिए कहते हैं सामान्य लोग आदि तीन लोगों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में और तिर्यक लोग तथा मनुष्य लोग के असंख्यात गुणे क्षेत्र में। देखो स्वस्थान वगैरह जो अभी हमने देखा था वो मनुष्य लोग का भी संख्यातवा भाग कहा था, क्योंकि पर्याप्त मनुष्य कितने कहाँ है, तो पूरे मनुष्य लोग के संख्यातवे भाग में। अब यहाँ कौन लिए? मानांतिक वाले। तो मानांतिक करके कहीं भी जाएंगे, मनुष्य में से मर कर कहीं भी जाएंगे, तो वो तो मनुष्य लोक से असंख्यात गुणा हो जाता है, तिर्यक लोक का भी असंख्यात गुणा। अभी कोई मनुष्य मरकर सातवें नरक में गया तो सात राज्यों तक उसके प्रदेश फैले रहे ना, तो ये असंख्यात गुणा हो गया, मनुष्य लोक से असंख्यात गुणा क्षेत्र। या कोई अन्य कहीं जन्मा तो उसके भी प्रदेश ऐसे दूर फैलेंगे। देखो सामान्य लोक आदि तीन लोगों के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में और तिर्यक लोक तथा मनुष्य लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य अपर्याप्त राशि की प्रधानता है, उसमें वो अपर्याप्तों की प्रधानता ली। इसी प्रकार उपपाद का भी कथन करना चाहिए, यानी जन्म के लिए भी जैसे मारणांतिक का है उसका उसको हम भाग देंगे पल्ले के असंख्यात, और फिर उतने प्रमाण वो उपपाद वे भी फैले हुए हैं इसलिए उसको भी असंख्यात गुणा क्षेत्र में लेना। इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपर्याप्त राशि के एक बार आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण और दो बार पल्योपम के असंख्यात विभाग प्रमाण भागार स्थापित करना चाहिए। ये तिरियंचों के बाद हमने देखा था दो बार या तीन बार पल्य का असंख्यात, यहाँ पहली बार आवली का असंख्यात, फिर दो बार पल्य का असंख्यात। हाँ हाँ हाँ, पहले एक बार भाग देने पर जो संख्या आएगी उसको फिर दोबारा उससे भाग देना, तो डायरेक्ट दो बार हम नीचे भाग देते हैं तो भी वही संख्या आती है। ऊपर राशि लिखेंगे और नीचे भागार में आवली का संख्यात भाग लिखेंगे, पल्ले का संख्यात भाग लिखेंगे, फिर पल्ले का संख्यात, तो हमको डायरेक्ट ये उपपाद वाली राशि मिलेगी। अब कहते हैं अब आगे गुणस्थानों की बात करेंगे। स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात और वैक्रियक समुद्घात से परिणत हुए सासादन सम्य दृष्टि और असंयत सम्य दृष्टि सामान्य मनुष्य कितने क्षेत्र में रहते हैं? तो सामान्य लोक आदि चार लोकों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में और मानुषिक क्षेत्र के संख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते, क्योंकि ये तो पर्याप्त वाले ही होंगे, क्योंकि अपर्याप्त जीवों के तो अगले गुणस्थान होते ही नहीं है मनुष्य अपर्याप्तों में, लब्धि अपर्याप्तकों में, बराबर है ना। हाँ, मारणांतिक समुद्घात और उपपाद को प्राप्त हुए सासादन सम्यक दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि सामान्य मनुष्य सामान्य लोक आदि चार लोकों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि सासादन वाले हैं तो मरकर कहाँ जाएंगे? मनुष्य सासादन वाले मरकर कहाँ कहाँ जाएंगे? नरक छोड़कर। हाँ, नरक छोड़कर जाएंगे, परंतु सासादन वाले जाएंगे तो पंचेंद्रिय में जाएंगे। पंचेंद्रिय तिर्यंच हो सकते हैं, मनुष्य हो सकते हैं, देव हो सकते हैं, बराबर। और इसलिए अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते कहाँ? स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात और वैक्रिक समुद्घात रूप से परिणत हुए सम्यक मिथ्या दृष्टि उक्त मनुष्य कितने क्षेत्र में रहते हैं? तो सामान्य लोक आदि चार लोगों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में और मनुष्य क्षेत्र के संख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। इनमें वो मारणांतिक नहीं होगा, उपपाद नहीं होगा सम्यक मिथ्या दृष्टियों में। अब संहिता संहितों की बात करते हैं। स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात और वैक्रिक समुद्घात इन पदों से परिणत हुए संहिता संहित उक्त मनुष्य कितने क्षेत्र में रहते हैं? सामान्य लोक आदि चार लोकों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में और मनुष्य क्षेत्र के संख्यात्वे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते। देखो मारणांतिक और उपपाद को हमेशा अलग निकाला है क्योंकि उस समय वे प्रदेश बहुत फैले हुए हैं। बाकी जो गुणस्थान है मनुष्य जीव है पर्याप्त है, तो मनुष्य क्षेत्र के संख्यात्वे भाग में है। और जब मारणांतिक और उपपाद की बात आएगी तो मनुष्य क्षेत्र से भी असंख्यात गुणा क्षेत्र में कहेंगे। मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त हुए संयता संयत सामान्य मनुष्य सामान्य लोक आदि चार लोगों के असंख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र में। अब ये संयता संयत जब मारणांतिक समुद्घात करेंगे तो कहाँ तक जाएंगे? स्वर्गों में ही जाएंगे, स्वर्ग में ही जाएंगे। मनुष्य नहीं होगे, तिर्यंच नहीं होगे, है ना? क्योंकि पांचवें गुणस्थान में मरण होता है या ऊपर के गुणस्थानों में, तो देवों में ही होता है, जाता है, नियम है ये। जिसने दूसरी आयु बांधी है उसको पांचवा या ऊपर का गुणस्थान होता ही नहीं है। मान लेते किसी ने मनुष्य आयु बांधी हो पहले सम्यक तो होने से पहले, या तिर्यंच आयु बांधी है, या नरकायु बांधी है, तो वो भले क्षायिक सम्य दर्शन हो जावे परंतु उसको पांचवा गुणस्थान नहीं होगा। श्रेणिक राजा नरक में जाने वाला था, उसका आयु बंधी थी, तो उसको चौथे से आगे के गुणस्थान प्राप्त नहीं हुए। मनुष्यायु भी जिसने बांधी हो तो उसको ये पांच अनुव्रत धारण करने के भी उसके परिणाम नहीं होते, ऐसे वो सहज उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए क्या कहते हैं, मारणांतिक वाले जो संयता संयत है वो मनुष्य क्षेत्र से असंख्यात गुणे क्षेत्र में, सोलवे स्वर्ग तक भी जाएगा जीव तो उसके प्रदेश इतने फैलेंगे। प्रमत्त संयत गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक सामान्य मनुष्यों के यथासंभव स्वस्थान स्वस्थान आदि पदों का क्षेत्र मूलोग प्ररूपणा के समान जानना चाहिए। यानी संख्यात बहुभाग होगा, विहार व्रत वाले की वगैरह वगैरह आगे समझना। इसी प्रकार अप्रमत्त के बाद वो विहार व्रत वाला भी नहीं लेना, अप्रमत्त से आगे प्रमत्त को तो लेना विहार व्रत में। वो पहले हमने मूलोग में देखा था गुणस्थान की जब बात की थी। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में समझना चाहिए। तो मनुष्यनियों में क्या विशेषता होगी, उपपाद में कौन से गुणस्थान हो सकते हैं मनुष्यनियों में उपपाद वाले को? पहला और दूसरा होगा उपपाद के समय, क्योंकि समय दृष्टि मरकर मनुष्यनियों में नहीं जन्मेगा इसलिए। और बाकी उसके वो आहारक वगैरह नहीं होगी वो भी बात आएगी। अभी देखो इतनी विशेषता है, इनमें मिथ्या दृष्टियों का कथन सासादन समय दृष्टियों के समान है। मनुष्यनियों में असंयत समय दृष्टियों का उपपाद नहीं पाया जाता है। यानी मनुष्यनीय और चौथा गुणस्थान होगा तो वहाँ ये उपपाद वाला क्षेत्र नहीं कहेंगे, क्योंकि उनमें उपपाद होता है नहीं चौथे वालों का। बाद में जो चौथे में जाती है मनुष्यनीय, मनुष्यनीय ने यह भाववेद की अपेक्षा, वो तो मोक्ष भी जा सकते भाववेद वाले, द्रव्यवेद की बात नहीं है। इसी प्रकार उन्हीं के ने मनुष्यनियों के भाव स्त्री वेद वाले जो है प्रमत्त संयत गुणस्थान में तेजस समुद्घात और आहारक समुद्घात नहीं पाया जाता। यह हमने पहले भी देखा था ना, स्त्रीवेद वाले के ये नहीं हो जाता, ये परिहार विशुद्धि संयम वगैरह उनके नहीं पाया जाता। ये बहुत सारी ऐसी बातें हमने देखी थी। तीर्थंकर प्रकृति बनती तो है परंतु उसका उदय नहीं पाया जाता, ये भी बात हमने देखी थी। अब आगे 12वां नंबर का ये सहयोगी केवली का अलग सूत्र बताया है, क्योंकि उसका क्षेत्र समुद्घात की अपेक्षा बहुत बढ़ जाता है। सहयोगी केवली केवड़ी खेतते ओघम, इसकी बात ये ओघ प्रवीण गुणस्थान के प्रकरण में हमने देखी थी, यहाँ फिर से बताते हैं। सहयोगी केवली भगवान कितने क्षेत्र में रहते हैं, ओघ प्ररूपणा में सहयोगी जिनों का जो क्षेत्र कहे आए तत्प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। इस सूत्र का अर्थ मूलोग सूत्र का निश्चय करके, यानी पहले हमने गुणस्थानों की चर्चा की थी, मूलोग की चर्चा, तब इसकी प्ररूपणा कर आए हैं और उसको दंड कपाट उसका क्षेत्रफल निकाल के भी बताया था। तो उस कथन के अनुसार सहयोगी केवली जीव लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र में, लोक के असंख्यात बहुभाग प्रमाण क्षेत्र में। अभी असंख्यात विभाग क्षेत्र में कौन कौन है? लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र में सहयोग केवली, यानी जो समुद्घात नहीं करते वो भी है और दंड वाले भी और कपट वाले भी, और जो प्रतर वाले हैं वो असंख्यात बहुभाग नहीं ना, प्रतर में तो पूरे फैल जाते ना, असंख्यात बहुभाग प्रमाण क्षेत्र में अथवा सर्वलोक में, सर्व में वो लोक पूर्ण समुद्घात की अपेक्षा, इस प्रकार कहना चाहिए। ये तो हमने बहुत विस्तार से जाना था, उसका घनफल भी निकाल के देखा था। एवं अगले प्रश्न पर आए 76, लब्धि अपर्याप्त मनुष्य कितने क्षेत्र में रहते हैं? ऊपर का पढ़ेंगे, मूल सूत्र, मनुष्य अपज्जत्ता केवड़ी खेते लोगस्य असंख्ये यदि भागे, यानी लब्धि अपर्याप्त मनुष्य जिसको सम्मूर्छन मनुष्य कहते हैं ना, लब्धि अपर्याप्त कितने क्षेत्र में रहते हैं? तो लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। अब उनमें स्वस्थान स्वस्थान, वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात से परिणत हुए लब्धि अपर्याप्त मनुष्य, देखिए उनके भी क्रोध मान माया लोभ चलते होंगे कि नहीं चलते होंगे? हाँ, हमें लगता है कि हम किसी पर क्रोध करें तो हमारी कषाय हो सकती है, क्योंकि दूसरा कोई हमको तकलीफ देगी ना, दूसरे के कारण हमने क्रोध मान के रखा है। तो यह अपर्याप्त अवस्था में कैसा होता होगा क्रोध? हाँ, और अभी हमको क्यों होता है? क्योंकि बाजू वाला तकलीफ देता है अपनी ही योग्यता से, क्योंकि हमने मान रखा है ना। देखो चारित्र गुण है और उसका विभाव परिणाम, तो वहाँ तो मिथ्यात्व ही पूरा पूरा लब्धि अपर्याप्त, तो वहाँ उसके राग द्वेष के निरंतर परिणाम चल ही रहे। तो कषाय समुदाय से परिणत हुए लब्धि अपर्याप्त मनुष्य निश्चित क्रम से सामान्य लोक आदि चार लोकों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में और मनुष्य क्षेत्र के संख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं, और विन्यास क्रम से तो असंख्यात मनुष्य क्षेत्र लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों का क्षेत्र है। निजिद कमेन और विन्यास कमेन, मेरे ख्याल से वो रहने का क्षेत्र उनका असंख्यात संख्या तो भाग है, और विन्यास क्रम है वो सभी जीवों की, अभी हम अवगाहना से मल्टीप्लाई करेंगे क्षेत्र को तो बड़ा हो जाएगा। असंख्यात है इन जीवों की संख्या, असंख्यात है मानव क्षेत्र लिमिटेड है और इनकी संख्या असंख्यात है, असंख्यात गुणा उनकी अवगाहना। छोटी होगी परंतु उनकी संख्या कितनी है? संख्या ज्यादा है ना, पर्याप्त जीव संख्यात है। क्या कहते हैं विन्यास क्रम और निश्चित क्रम का क्या अर्थ है? देखते कहीं उसका अर्थ मिला तो बाद में, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो जीवों की संख्या राशि को हम अगर अवगाहना से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, उस अपेक्षा से कहना चाहते होंगे शायद। उसका कहाँ प्रश्न है? मैंने तो वही कहा ना अभी, जीवों की राशि संख्या मल्टीप्लाइड बाय उनकी अवगाहना। फिर भी संख्या बहुत ज्यादा है ना, इसलिए देखेंगे आगे कहीं आता है क्यों इतना असंख्यात गुणा क्षेत्र कहाँ है, असंख्यात मनुष्य क्षेत्र लिखा है ना। देखो मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त हुए लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों का क्षेत्र ओघ मनुष्य प्ररूपणा के समान है, वो भी वो असंख्यात गुणा क्षेत्र में व्यापेगा। मारणांतिक समुद्घात करके और पर्याप्त जो है वो कहीं भी जन्म लेगा तो वहां तक उसके आत्म प्रदेश फैलेंगे। मारणांतिक क्षेत्र के स्थापित करने पर सुचंगुल के प्रथम और तृतीय वर्ग मूल को परस्पर गुणित करके जो राशि आवे उसका जगत श्रेणी में भाग देने पर लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों का द्रव्य प्रमाण होता है। ये उनकी संख्या बताई कि सुचंगुल का प्रथम वर्गमूल गुणा तृतीय वर्गमूल और वो जगत श्रेणी को भाग देना तो उतने लब्धि अपर्याप्त मनुष्य है, उनकी संख्या है। संख्या है अभी अवगाहना तो आगे अलग बताएंगे, अवगाहना अभी नहीं बताई, ये संख्या है। इसमें आवली के असंख्यात भाग मात्र उपक्रमण काल का भाग देने पर एक समय में मरने वाले लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों की राशि का प्रमाण होता है एक समय में। अभी उसको मारणांतिक समुदाय के काल से गुणा करेंगे तो पूरी राशि आ जाएगी। इसे पल्योपम के असंख्यात्व भाग से भाजित करके और एक कम पल्योपम के असंख्यात्व भाग से गुणित करने पर यानी असंख्यात बहुभाग एक समय में संचित हुई मारणांतिक समुदाय को प्राप्त लब्धि अपर्याप्त मनुष्य राशि होती है। पहले उन्होंने बताया कि मनुष्य राशि का प्रमाण कितना है, फिर उपक्रमण काल का भाग देने पर एक समय में मरने वाली राशि बताई। मरने वाले सभी मारणांतिक समुदाय नहीं करते हैं इसलिए उसका असंख्यात बहुभाग है वो मारणांतिक समुदाय करता है तो उसकी राशि निकाली। फिर पुनः इस राशि के आवली के असंख्यात भाग प्रमाण मारणांतिक उपक्रमण काल से गुणित करने पर, देखो अभी फिर से गुणा किया, पहले एक समय में कितने मरते हैं वो निकाला, एक समय में कितने मरते हैं उसका बहुभाग मारणांतिक करते हैं तो एक समय में मारणांतिक कितने करते हैं तो मारणांतिक का काल जो है या उपक्रमण काल जो है उसके हम गुणा करेंगे तो जो टोटल मारणांतिक की राशि आ जाएगी। मारणांतिक काल के भीतर संचित जीव राशि का प्रमाण होता है यानी एक समय में इतने तो मारणांतिक काल जो पूरा है उसमें कितने। पुनः इसे एक दूसरे पल्योपम के असंख्यात भाग से भाजित करने पर राजू प्रमाण आयाम रूप से किया है मारणांतिक समुदाय जिन्होंने ऐसे लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों की राशि होती है। देखो कोई तो जीव बहुत दूर तक मारणांतिक समुदाय करेंगे, कोई बहुत नजदीक तक करेंगे, तो यहाँ राजू वाले प्रमाण की बात के लिए उनकी अपेक्षा से यहाँ निकाली है संख्या। तो एक राजू प्रमाण जो करने वाले हैं ऐसे लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों की अपेक्षा से ये कथन कर रहे हैं। इसलिए क्या है कि जो टोटल मारणांतिक उन्होंने निकाले ना जी, उसमें से राजू प्रमाण मारणांतिक करने वाले कितने हैं उसकी संख्या निकालने के लिए फिर दोबारा यहाँ पल्ले के असंख्यात भाग से भाग दिया था। अब कहते प्रतरांग नीचे से चौथी लाइन, प्रतरांगुल को पल्योपम के असंख्यात भाग से भाजित करने पर राजू प्रमाण आयत क्षेत्र का विस्तार होता है। इसी प्रकार उपपाद का भी क्षेत्र समझना चाहिए। उपपाद में वो पहला दंड उपसंहार होता है उसका, बाकी मारणांतिक जैसे उसका भी क्षेत्र है। इतनी विशेषता है कि उपपाद राशि एक समय में संचित होती है, उपपाद राशि हमेशा एक समय वाली है और मारणांतिक राशि जो है वो तो जो कुछ आवली का असंख्यात भाग जो कुछ है जो अंतर्मूर्ति था उतना है। इसलिए ऊपर जो आवली के असंख्यात भाग प्रमाण गुणकार कहे आए हैं वह निकाल देना चाहिए। मारणांतिक समुदाय में आवली के असंख्यात भाग से गुणा किया था उतने असंख्यात समय तक होता है मारणांतिक समुदाय और यहाँ उपपाद राशि में फिर वो एक समय की बात निकाली जीव राशि वो एक समय क्योंकि उपपाद हमेशा पहला समय ही लेना है बहु का पहला समय लेना। अब दूसरे दंड में जगत श्रेणी के संख्यात भाग आयाम रूप से किया है मारणांतिक समुदाय जिन्होंने ऐसे जीवों को लाना इष्ट है इसलिए एक दूसरा पल्योपम का असंख्यात भाग भागहार स्थापित करना चाहिए। उपपाद में दूसरे दंड में स्थित जीवों की अपेक्षा मुख्य है और वो भी एक राजू प्रमाण दूसरा दंड लिया उन्होंने। इनको तो मेजॉरिटी क्षेत्र मैक्सिमम निकालना है इसलिए इसको लिया है। दूर भी मारणांतिक समुदाय करने वाले हो गए, नजदीक भी एक फुट भी करने वाले हो गए ना, यहाँ से लेकर यहाँ जन्मने वाला है तो यहाँ भी मारणांतिक समुदात करेगा, परंतु उसकी बात नहीं की है। यहाँ विशिष्ट प्रमाण लेकर उनकी संख्या निकालना है और उनकी अपेक्षा से कौन सी संख्या से भाग देना, कितनी संख्या निकालना, मेजॉरिटी की उन्होंने बात की है और उसमें भी उत्कृष्ट जो करते हैं मैक्सिमम, उसकी बात यहाँ ली है। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था दूर मारणांतिक समुद्घात, यानी बहुत अभी नीचे से ऊपर तक 14 राज्यों भी कोई करेगा, जो वायु का एक वाला यहाँ से वहां गया तो उसका मारणांतिक समुदाय इतना दूर लंबा होगा, परंतु जब जब यहाँ बात करते हैं तो कोई विशिष्ट उसका प्रमाण लेके बात करते, इसलिए यहाँ एक राज्य वाला प्रमाण लेके उसकी बात की। अब देवगति की बात करते, देवगदीय देवेशु मिच्छा दिट्ठी पहुड़ी जाव असंजद सम्माइठी केवड़ी खेते लोगस असंख्य जदि भागे। देवों में तो अभी चार ही गुणस्थान है, तो इसलिए उस चार गुणस्थानों की अपेक्षा कहेंगे। देवगति में देवों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर असंयत समय दृष्टि गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान के देव कितने क्षेत्र में रहते। देखो तीसरी पुस्तक में हम कितने हैं ऐसा केवड़िया ऐसा पूछते थे और वो संख्या हमने निकाली थी अलग अलग पद्धति से। यहाँ कितने क्षेत्र में, यानी संख्या जो हमने तीसरी पुस्तक में निकाली उसको उन देवों की अवगाहना से गुणा करेंगे तो हमको वो स्वस्थान आदि क्षेत्र मिलेंगे। तो कहते लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात और वैक्रियक समुद्घात को प्राप्त हुए देव मिथ्यादृष्टि जीव सामान्य लोक आदि तीन लोकों के असंख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र में, तिर्यक लोक के संख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र में और मानुष्य क्षेत्र से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ज्योतिष का देव राशि प्रधान है, ज्योतिष राशि प्रधान है इसलिए देखो तिर्यक लोक का संख्यात वा भाग लिया। तिर्यक लोक कितना है? एक राज्य बाय सात राज्य बाय एक लाख योजना है ना। और ज्योतिष लोग ज्योतिष कितने क्षेत्र में रहते हैं? ज्योतिषी जो देव है, ज्योतिषियों के विमान कहाँ पर है? हाँ 110 योजन के बीच के उतने ही लेवल में है सारे ज्योतिषी देव, यानी 790 से लेकर 900 योजन तक के। ऐसे तो एक राजू में, एक राजू में क्योंकि वो त्रसनाली में आएंगे तो एक राजू भाई एक राजू जो क्षेत्र है तिर्यक लोक तो एक राजू गुणा सात राजू और गुणा एक लाख योजन है हाइट उसकी। इसलिए जो ज्योतिषी लोगों का क्षेत्र कितना है? तिर्यक लोक का संख्यात्वा भाग। उसका भी कम हो गया क्योंकि एक गुणा सात था वहाँ तिर्यक लोक, उसमें भी हाँ यानी हमने लाख का सातवां भाग इतने जगत प्रतर देखे थे। अभी एक राजो गुना एक राजो यानी 1/49 जगत प्रतर हो जाएंगे और फिर उसमें तो 110 योजन लेना खाली, तो ये पूरे तिर्यक लोक का संख्यात्वा भाग हो जाएगा। क्योंकि ऊपर के देव तो ऊपर ऊपर रहते हैं ना, तो वो तो बहुत क्षेत्र ज्यादा हो जाएगा। यहाँ ज्योतिषी देवों की प्रधानता, इसीलिए उन्होंने बता दिया ज्योतिषी देवों की प्रधानता से एक क्षेत्र बता रहे। देखो क्या कहते हैं, यहाँ पर ज्योतिष का देव राशि प्रधान है, मारणांतिक समुद्घात और उपपाद रूप से परिणत हुए मिथ्यादृष्टि देव सामान्य लोक आदि तीन लोकों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में और मनुष्य लोक तथा तिर्यक लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते। वो स के ऊपर बिंदी करना, यहाँ भी मनुष्य लोक के असंख्यात गुणे क्षेत्र में तिर्यक लोक के, क्योंकि मारणांतिक की बात है यहाँ, इसलिए तो देव मरकर कहाँ कहाँ जाएंगे? तो मनुष्य तीरेंज पंचेंद्रियों में ही आएंगे, है ना? तो मध्यलोक में ही आएंगे। यहाँ पर क्षेत्र के प्रमाण को जानकर स्थापित करना चाहिए। देवों के शेष गुणस्थानों की प्ररूपणा ओघ प्ररूपणा के समान है। अब भवनवासियों की बात करते हैं। एवं भवनवासी पहुड़ी जाव उवरिम उमरिम गेवज्ज विमानवासी देवात्ति। भवनवासी देवों से लेकर उपरिम उपरिम ग्रेवे के विमानवासी देवों तक का क्षेत्र इसी प्रकार होता है। यहाँ क्या पूछा था पहले उन्होंने? देवगति में देव मिथ्या दृष्टि की बात की थी और असंयत तक की बात है। तो यहाँ मिथ्या दृष्टि कहाँ तक उत्पन्न होते हैं? तो भवनवासी से लेकर नवे ग्रहवेग तक, उपरिम उपरिम ग्रहवेग यानी नवा ग्रहवेग। वहां जाने के बाद वो दूसरा तीसरा चौथा गुणस्थान प्राप्त करे, उसकी बात नहीं अभी। अब इस देशामर्शक सूत्र से सूचित हुए अर्थ को कहते हैं, वह इस प्रकार। स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैकृत समुद्घात और उपपाद रूप से परिणत हुए भवनवासी मिथ्यादृष्टि देव सामान्य लोक आदि चार लोकों के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। ज्योतिषियों की अपेक्षा प्रधानता से बात की थी तब तीर्यक लोक का संख्या तो भाग लिया था। अब भवनवासियों की मुख्यता है और ग्रहवेग तक की बात की तो क्या कहते हैं? अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में। भवनवासियों का क्षेत्र कितना है? ढाई द्वीप जितना है कि ज्यादा है? अढ़ाई द्वीप जितना है कि ज्यादा है? हाँ, चित्रा पृथ्वी के जो दो तीन भाग है ना पहले, हाँ, खर भाग, पंक भाग और अब बहुल भाग, तो उसमें पहले दो भागों में रहते वो असुर कुमार जाति के देव और फिर दूसरे अन्य जाति के देव। तो वो उनके जो भवन है वो पूरे फैले हुए एक राजू भी तक, जहाँ असंख्या द्वीप समुद्र है ऊपर पृथ्वी के ऊपर और नीचे भवनवासियों के देव है। वहाँ तो 45 लाख योजन तक तो कोई नहीं है, उसके आगे है सब। हमारे नीचे कोई भवन नहीं है, अकृत्रिम चैत्यालय इसके नीचे नहीं है कहीं। बीच का 45 लाख योजन छोड़कर आगे भवन है सब। नरक के बिल तो है सेंटर में, पर भवनवासियों के भवन ये ढाई द्वीप के नीचे नहीं पाए जाते। परंतु बाहर तो असंख्यात योजन ये कितना राजू तक फैले हुए ना, एक राजू बा एक राजू वहां तक उसके भवन है। ऐसा पढ़ा था हमने पहले, याद है आपको? मेरे ख्याल से वो संयम मार्गणा संयम प्रकाश में कहीं पढ़ा था। हाँ, त्रसनाली कितनी बड़ी है, एक राजू गुणा एक राजू। मनुष्य लोग तो ढाई द्वीप है, 45 लाख योजन है केवल, वो योजनों में है। व्यंतर व्यंतर और भवनवासी, भवनवासी में भी 10 प्रकार है ना, 10 प्रकार। व्यंत तो ऊपर भी रहते हैं, समुद्रों के ऊपर भी रहते हैं, मध्यलोक में यानी उसमें पहाड़ों में, मनुष्यों में, सब जगह रहते हैं। असंख्या द्वीप समुद्रों में, सब समुद्रों के ऊपर भी उनकी रचनाएं होती है, ग्रहों की है, जो कुछ नगर पूर उनके जो होते हैं। इसलिए यहाँ कहाँ अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ भवनवासियों की मुख्यता है ना, इसलिए वो ज्यादा क्षेत्र लिया उसका। शंका, कर्ण रेखा के आकार से स्थित भवनवासियों के क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले तिर्यंच और मनुष्य मिथ्यादृष्टि जीव दो विग्रह करके यानी दो मोड़ लेके जगत श्रेणी के संख्यात वे भाग प्रमाण आयाम रूप से उत्पन्न होते हुए पाए जाना संभव है। इसलिए भवनवासियों का उपपाद क्षेत्र तिर्यक लोक से असंख्यात गुणा होना चाहिए। यहाँ लिखा था ना ऊपर, हाँ, ढाई द्वीप से असंख्यात गुणा क्षेत्र लिखा था, तिर्यंच ये सॉरी तिर्यक लोक से असंख्यात गुणा नहीं कहा था। तो यहाँ क्या कहता है, कर्ण रेखा किसको कहते हैं? हाँ मालूम है, हाँ कान की, हाँ देखो ये रेक्टेंगल है या कोई भी ट्रायंगल है तो उसमें जो तीसरी लाइन है ऐसी, इसको कर्ण कहते हैं। त्रिकोण में जो दो बाजू है, ये यहाँ हमने एक रेक्टेंगल है यहाँ, और ये कर्ण है या कोई आयताकृति है, तो ये इसको हम कर्ण कहते ना, बीच वाले। ये कर्ण रेखा शब्द आया था इसी पुस्तक में, कहाँ आया था? वो सुरपाकार हमने निकाला था ना, उसमें तो हमने एक डायमेंशन देखी थी, सात राजू, दूसरी तीन राजू, और फिर कर्ण रेखा को बीच में से छेद कर हमने उसके स्क्वायर बनाए थे ऐसे, ये इसको कर्ण रेखा को भूमि बनाकर ऐसा वहां शब्द आया था, ये कर्ण रेखा, कर्ण जिसको हम कहते हैं ना ट्रायंगल में, कर्ण। आप क्या कहते हैं गुजराती में, क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। हाँ आप क्या कहते हैं इंदुबेन? हाँ हाँ जो कुछ है वो समझ लेना, इसको कर्ण रेखा कहते हैं। तो उनको ऐसा कहना है, अभी ऐसा और ऐसा उत्पन्न हो गए तो ऐसे तिरछा आके उत्पन्न हुए भुवनवासियों में, ऐसा कहते हैं वो, शंकाकार की शंका है ना। तो ये लंबा ज्यादा लंबा हो गया, तो ये तिर्यक लोक से असंख्यात गुणा कहना चाहिए था, ऐसा उसका कहना है। कोई वहां से महामत्स्य आया और वहां उत्पन्न होने वाला है, तो इतना दूर आया है, कर्ण रेखा तो लंबी होती है, हम रोड क्रॉस करते हैं तो सीधा करने में शॉर्ट डिस्टेंस, और ऐसा करेंगे तो लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है ना थोड़ा। तो कहते ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है, तो ये असंख्यात गुणा कहो तिर्यक लोक से, ऐसा इसका कहना है। देखो उसका समाधान, यदि उपपाद क्षेत्र का आयाम, आयाम मैंने लंबाई, जगत श्रेणी के संख्यातवे भाग प्रमाण पाया जाता तो यह उक्त कथन सत्य होता। जगत श्रेणी यानी सात राज्यों, सात राज्यों का संख्यात्व भाग ही अगर होता तो उसका कथन सत्य होता, किंतु उपपाद क्षेत्र का आयाम संख्यात सुचंगुल मात्र ही है, क्योंकि यहाँ से संख्यात योजन नीचे जाकर भवनवासियों के विमानों का अवस्थान नहीं पाया जाता, तथा तिर्यक लोक में भी सर्वत्र भवनवासियों के आवास नहीं है, क्योंकि तिर्यक लोक के मध्यवर्ती असंख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र में ही भवनवासी देवों का अस्तित्व देखा जाता है। दूसरे उपरिम देवों में उत्पन्न होने वाले तिर्यंचों के समान भवनवासियों में उत्पन्न होने वाले तिर्यंच और मनुष्यों का अपनी उत्पत्ति की दिशा को छोड़कर तिरछागमन होता हो ऐसा भी नहीं है। तिरछागमन तो होता ही नहीं, हमने देखा था सीधा ही गमन होता है, क्योंकि मनुष्य और तिर्यंचों की बाण के समान सीधी गति से भवनवासी लोक के समीप आकर अधस्तन श्रेणी में स्थित भवनवासी देवों में उत्पत्ति देखी जाती है। यानी वो पहले बाण के समान सीधे नीचे आएंगे, वो कितना नीचे आना पड़ेगा उनको, पूरी पृथ्वी पहली उसकी मोटाई कितनी है? हाँ 1000 योजन तो मेरु पर्वत का भूभाग है, पूरी पृथ्वी। हाँ 1,80,000 है ना। हाँ तो उसमें भवनवासी तो यहाँ ऊपर दो भागों में है, नीचे तो नरक है। तो मान लेते कुछ योजन है, परंतु संख्यात योजन, उसके अंगुल करेंगे तो भी संख्यात ही हो जाते। पहले यहाँ कोई मनुष्य या कोई तिर्यंच मरा तो सीधा पहले नीचे आएगा, फिर जिस भवन में उत्पन्न होता है होना है वहाँ वो करके जाएगा, ऐसा सीधा गमन करके, इसलिए उसको संख्यात सुचंगुल कहा, नीचे उत्पन्न होने वाले की अपेक्षा से। हाँ उसके भाग आएंगे अभी आगे, हर एक पृथ्वी की मोटाई कितनी वो आएगी बात आगे, कुछ थोड़े पांच पेजेस के बाद वो पृथ्वियों की मोटाई आने वाली है। 180,000 योजन है वो पहली पृथ्वी की मोटाई, उसमें भी तीन भाग होते हैं ना, और ऊपर के दो भागों में जो ये भौनतिक वाले उसमें से व्यंतर और भौनवासी, और नीचे में तो नरक है पहला, इसलिए वो संख्यात योजन कहेंगे हम, और उसके अंगुल करेंगे तो संख्यात अंगुल हो जाएगी। हाँ देखो, यह कैसे जाना जाता है शंका, उसका समाधान, भवनवासियों का उपपाद क्षेत्र तिर्यक लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण अन्यथा बन नहीं सकता, इससे उक्त कथन जाना जाता है। तो उपपाद क्षेत्र में पहला दंड तो समेट लिया, फिर दूसरा कितना होगा, जब उनके क्षेत्र तक तो आ गया नीचे पहले, फिर वहाँ अपने जो उसका जो भवन होगा वहाँ तक जाना है, तो तिर्यक लोक का असंख्यात विभाग प्रमाण रह जाता है। अपने रहने के स्थान से नीचे जाकर भवनवासी देवों में उत्पन्न होने वाले मनुष्य तिर्यंचों के उपपाद क्षेत्र का आयाम जगत श्रेणी के संख्यात विभाग प्रमाण पाया जाता है, मात्र इसीलिए उसका ग्रहण करना युक्त नहीं है, क्योंकि उक्त प्रकार से उनमें उत्पन्न होने वाले जीव बहुत थोड़े हैं। यानी पूरा राजू लंबा ऐसा ट्रैवल करना पड़ेगा, पहले तो नीचे आए, मान लेते स्वयंभू रमण में से कोई नीचे आया और फिर पूरा एक राजू ट्रैवल करके गया वहाँ दूसरे एंड में, वो बाजू उत्पन्न होना है मान लेते हैं ऐसा, तो ऐसे बहुत कम है कहते हैं। यह किस प्रमाण से जाना जाता है, उसका समाधान, उपपाद परिणत भवनवासी देव तिर्यक लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं, इस प्रकार व्याख्यान से उक्त कथन जाना जाता है। यानी ये क्षेत्र के ऊपर से डेरे वी कैन कम टू दैट कंक्लूजन कि उनका क्षेत्र उपपाद का क्षेत्र इतना कम है। अब मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त हुए मिथ्यादृष्टि भवनवासी देव मरकर कहाँ जाएंगे, यानी मारणांतिक समुद्घात कहाँ तक करेंगे, भवनवासी मरकर मिथ्यादृष्टि कहाँ जाएंगे, मनुष्य तिर्यंच में, मनुष्य या तिर्यंच में ही जाएंगे, पंचेंद्रिय ही होंगे, एकेंद्रिय हो सकते हैं, पर्याप्त हो गए केंद्रीय बादर, पर्याप्त हो गए, नहीं समझे, सौधर्म ईशान तक के एकेंद्रियों में जा सकते देव, नार के कहीं एकेंद्रियों में नहीं जाएंगे, परंतु देव मरकर एकेंद्रियों में जा सकते हैं। कौन से एकेंद्रिय, सूक्ष्म अपर्याप्त वो नहीं, बादर हो गए, पर्याप्त हो गए, और वो जल का एक, पृथ्वी का एक या वनस्पति का एक, अग्निवायु में नहीं जाएंगे, सूक्ष्म में नहीं जाएंगे, अपर्याप्त में नहीं जाएंगे, साधारण में नहीं जाएंगे, यानी निगोद वगैरह पर्याय में नहीं जाएंगे, परंतु बादर पृथ्वी का एक आदि में जाएंगे। तो यहाँ क्या कहते, मानांतिक समुदाय को प्राप्त हुए मिथ्यादृष्टि भवनवासी देव सामान्य लोक आदि तीन लोकों के असंख्यात विभाग क्षेत्र प्रमाण क्षेत्र में, तिर्यक लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में, इसलिए असंख्यात गुणा कहा तिर्यक लोक से, और अढ़ाई द्वीप से भी असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, वो मारणांती समुद्र वालों उसकी बात है। अभी ये जो आठ पृथ्वियां है वो कहीं पर भी समझो पृथ्वी का एक हुआ, बादर पृथ्वी का एक जीव पर्याप्त, तो वहां तक उसके आत्म प्रदेश फैलेंगे। शेष कथन ओघ प्ररूपणा के समान है, इतनी विशेषता है कि असंयत समय दृष्टियों का भवनवासियों में उपपाद नहीं होता। हमने देखा था असंयत समय दृष्टि भवनवासियों में जन्म नहीं लेते हैं, वहां उत्पन्न होने वाले की बात है। वान व्यंतर और ज्योतिष देवों का क्षेत्र देव सामान्य के क्षेत्र के समान है, इतनी विशेषता है असंयत समय दृष्टियों का वान व्यंतर और ज्योतिषियों में उपपाद नहीं होता। यानी भौतिक में किसी में भी असंयत समय दृष्टि जन्मते नहीं है, मिथ्या दृष्टि या सासाधन समय दृष्टि तो वहाँ जन्म लेंगे। वान व्यंतर यानी व्यंतर, व्यंतर को ही वान व्यंतर कहते हैं, इसकी चर्चा आई थी मेरे ख्याल से दूसरे भाग में आई थी, हाँ दूसरे तीसरे भाग में। अब बाकी चर्चा हम कल करेंगे अगला सूत्र। जावाणी के ज्ञान तै